الحمد لله بكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، مش لچند دنوں سے ان سات لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سات لوگ ایسے کہ قیامت کے روز ان کو عرش کا سایہ ملے گا جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں سے تین کے بارے میں ہم تذکرہ کر چکے ہیں، ایک عادل بادشاہ، دوسرا نوجوان عبادت گزار، اور تیسرا وہ شخص کہ جو خود مسجد کے باہر ہے پھر بھی اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ آج چوتھے شخص کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو صدقہ اس طرح سے کرتا ہے کہ صدقہ دائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو بائیں کو بھی خبر نہیں ہوتی، یعنی دوسرے کی مدد کرتا ہے مگر اس میں کسی کو بتاتا نہیں ہے، خاموشی سے کرتا ہے۔ تو صدقہ کرنے میں لوگوں کی تعریفوں کا طلبگار نہیں ہے بلکہ اللہ کی تعریفوں کا طلبگار ہے۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ جو اس خاموشی سے صدقہ کرتا ہے وہ اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر ایک گہری طلب ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ تو ایک عمل تو اس نے کیا ہی ہے کہ اپنے مال کو خرچ کیا دوسروں پہ، مگر ایک دوسرا عمل بھی کیا دیا جو سب سے بہتر ہے، کہ مال کو دوسروں پہ خرچ کیا اور اس کے لیے کسی کی کوئی تعریف، اس کا کوئی بدلہ حاصل کرنے کی اس کی نیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے مگر اتنی خاموشی سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر صدقہ کرنے کا شوق نہیں، یعنی اپنے مال سے دوسروں کی مدد کرنے کا اگر شوق نہیں ہے تو ابھی نیکی دل میں داخل نہیں ہوئی، کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے، کتنی ہی دینی کتابیں کیوں نہ پڑھ لے، اگر اپنا مال دوسروں پہ خرچ کرنے کا شوق نہیں تو ابھی نیک بنے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز ہرگز نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم وہ مال خرچ کر نہ لو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو جب تک یہ مال خرچ نہیں ہوگا، جب تک یہ مال دوسروں کی مدد میں نہیں لگے گا، تب تک نیکی ہرگز انسان کے دل میں نہیں آئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مال تو وہ خرچ کرے جو امیر ہے، ہم تو غریب ہیں، ہم تو ویسے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، تو ہم کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ مال خرچ کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری ہی کوئی نہیں ہے، مال خرچ کرنے کے لیے دل ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور آپ کے کچھ صحابی بہت ہی غریب تھے، گھر بھی نہیں تھے، مسجد میں رہتے تھے، اصحاب صفہ انہیں کہا جاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی یہ ایک مٹھی برابر جو خرچ کرتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، تو ان کو اجر دوسروں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ملتا ہے۔ तो अगर माल थोड़ा है मगर उस थोड़े में से भी इंसान कहता है कि मैं थोड़ा बहुत फिर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूँ, ये थोड़ा बहुत जो है ये मैं किसी की मदद में खर्च कर दूँ, तो भी अजर जो है वो पहाड़ बराबर सोना खर्च करने को मिल जाता है। तो इसलिए माल खर्च करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, शौक होना जरूरी है। चनाच नबी अलैहि सलात वसलाम की एक मुबारक हदीस, आपने फरमाया अमीर वो है ही नहीं कि जिसके पास बहुत ज्यादा माल और दौलत हो, फरमाया अमीर वही है जिसका दिल अमीर है। तो असल अमीर भी वही है जो अपना माल दूसरों पे खर्च करता है। और सच्ची बात यही है, अगर कोई बहुत अमीर इंसान है भी सही, उसकी अमारत महसूस उस वक्त ही होती है जब वो अपना माल दूसरों पे खर्च करना शुरू करता है, तो पता चलता है कि जी हाँ, इसको इसको अल्लाह ने दिया है। तो ये पक्की बात है कि इंसान उस वक्त तक नेक नहीं बन सकता जब तक के माल खर्च कर ना ले, जब तक के अपने माल से दूसरों की मदद ना करे। तो माल खर्च करना एक अलग इबादत, एक अलग अमल है, मगर अगर माल खर्च भी किया और इतनी खामोशी से किया कि किसी को पता ही न चला, तो फिर कयामत के दिन अल्लाह वालों की सफ में खड़ा होगा। माल खर्च करने से मुताल्लिक एक और भी मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि इंसान ये समझता है कि मैं माल खर्च करूंगा तो मेरा माल कम हो जाएगा, फिर मैं खुद क्या इस्तेमाल करूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सोच को भी रद्द फरमाया, आपने फरमाया कि मैं कसम खा के कहता हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं कसम खाता हूं माल खर्च करने से तुम्हारा माल कम नहीं होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बल्कि कुरान पाक की आयत है कि जो बंदा अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करता है अल्लाह उसे कई मर्तबा 10 गुना बढ़ा के वापस देते हैं, कई मर्तबा 100 गुना बढ़ा के वापस फरमाते हैं, कई मर्तबा 700 गुना और कई मर्तबा उससे भी ज्यादा। तो माल खर्च करने से माल कम नहीं होता, माल दूसरों पे खर्च करने से माल बढ़ता है। चुनांचे हदीस पाक में मशहूर वाक्य है बनी इसराइल के एक शख्स का, जो बहुत ही कसमा पुरसी के आलम में होता, खाने पीने को भी कुछ नहीं, कई कई दिन फाके के गुजरते, और कई दिनों बाद जब मिलता खाने को तो भी थोड़ा सा मिलता। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम का गुजर उनके गांव से हुआ, तो वो गया हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास कि अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ने जो मेरा रिस्क रखा है मुझे सारा एक साथ ही मिल जाए, ताकि चंद दिन अच्छी तरह से खा पी के गुजार लो। मूसा अलैहि सलाम ने दुआ की और उसका सारा रिस्क उसको एक साथ मिल गया। मूसा अलैहि सलातो सलाम ने उसके रिस्क के ऊपर नजर डाली तो आपको ऐसा लगेगा कि बस अगर ये हर रोज अच्छी तरह से खाएगा पिएगा तो चंद महीनों में ये रिस्क खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि चंद महीने बाद इसने फौत हो जाना है, इसका रिश्ता खत्म हो गया है। मूसा अलैहि सलाम का गुजर उसके गांव से हो रहा था, आप गुजर गए, काफी अरसे बाद, कई सालों बाद आपका उस गांव से गुजर फिर हुआ, तो आपको फिर से याद आया कि ये एक गरीब नौजवान था, उसने दुआ करवाई थी कि उसका रिस्क उसको सारा का सारा एक साथ मिल जाए, तो वो रिश्ता तो इतना ही था कि चंद महीने का गुजर हो सकता था, तो अब तो वो जिंदा नहीं होगा, तो वो तो फौत हो गया होगा, ये आपके जहन में था। जब उस गांव से गुजर हुआ तो आपने किसी से पूछा कि वो शख्स जिंदा है, तो उसने कहा हाँ वो तो जिंदा है। आप हैरान हुए, उसका रिस्क तो इतना थोड़ा था कि चंद महीने बाद उसको फौत हो जाना चाहिए था, तो इतने सालों बाद अभी भी जिंदा है। आपने पूछा जी कहाँ होता है, लगे फलां जगह पे होता है। आप खास उसको देखने के लिए गए कि जिंदा कैसे है, तो जब आप वहां उसके घर पे पहुंचे तो पता चला कि उसका घर तो नहीं तो बड़ा महल नुमा घर है, और सवारी के लिए बेहतरीन जानवर है। और जब अंदर दाखिल हुए तो खाना लग रहा था, तो दस्तरखान बहुत लंबा और मुख्तलिफ किस्म के, जबरदस्त किस्म के, हर किस्म के खाने मौजूद। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, यार ये तो वो शख्स था जिसका थोड़ा सा रिस्क, चंद महीनों में इसके रिश्ते खत्म हो जाना था, इसने फौत हो जाना था। इतने अरसे बाद भी जिंदा है, और ऐसे बादशाहों वाली जिंदगी है, माल और दौलत की रेल पेली है हर तरफ। या अल्लाह, समझ नहीं आया। अल्लाह ने वही भेजी है, मेरे प्यारे मूसा तूने बिल्कुल सही कहा कि इसका रिस्क तो थोड़ा ही था, मगर जो रिस्क हमने इसको थोड़ा दिया, ये उस रिस्क को दूसरों पे खर्च कर देता। और ऐ मेरे प्यारे मूसा, ये हमारी आदत है कि जो हमारे रास्ते में खर्च करता है, जो सदका करता है, हम उसको बढ़ा के वापस करते हैं। ऐ मेरे प्यारे मूसा, जब तक ये दूसरों पे खर्च करता रहेगा, हम इसके माल को बढ़ाते रहेंगे। अल्लाह, तो माल खर्च करने से मुतालिक एक बात तो यह है कि जब तक के माल खर्च नहीं करेंगे, नेकी नहीं आएगी दिल में। और दूसरी अहम बात कि माल खर्च अल्लाह के रास्ते में करने से, सदका करने से माल में कमी नहीं आती, माल बढ़ जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बरकत वाला माल अता फरमाए, अल्लाह माल को खर्च करने वाला हमें बनाए। तो आखिर दावाना अनिलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बस छोटा सा ऐलान है दुआ से पहले, इंशाल्लाह कल यानी जुमा की शाम हिदाया एकेडमी ने एक सेमिनार रखा है कि क्या शेयर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, अपना माल शेयर्स में लगाना हलाल है, और अगर है तो कितना हलाल है। उस हवाले से एक बड़ा सेमिनार है, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साहबजादे डॉक्टर इमरान अशरफ साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, और स्टॉक ब्रोकर्स भी कुछ इस मौके पे मौजूद होंगे। तो ये सुफा यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में इंशाल्लाह है, कल शाम 7:15 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो ज़रूर इसमें सब शिरकत फरमाएं, मर्दों के लिए है और ख़वातीन के लिए ऑनलाइन इसका लिंक मौजूद होगा। अल्लाह ताला हमें इससे इस्तफादा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुम, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअ وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله.